एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, इस ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे निबंध पर बात करने वाले हैं जो है तो छोटा पर उसका असर बहुत गहरा है, बहुत दूर तक जाता है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर निबंध व्हाई आई राइट की, यानी मैं क्यों लिखता हूँ। और देखिए, ये सिर्फ लिखने वालों के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हर उस इंसान के लिए है जो, मतलब, ये सोचता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है या कला समाज में क्या करती है, और भाई आज के जमाने में सच बोलना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और ऑरवेल जिस तरह से, मतलब पूरी ईमानदारी से अपने लिखने के पीछे की वजहों को खंगालते हैं, वो वाकई कमाल का है।
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद अपने मन की परतें उधेड़ रहे हो, है ना?
हाँ, और यही चीज हमें दिखाती है कि लिखने जैसा काम जो बाहर से शायद बहुत अकेला और मुश्किल सा लगता है, उसके पीछे कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और हाँ, राजनीतिक वजह हो सकती हैं।
सही कहा। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी शब्दों के नाम क्यों कर देता है।
तो चलिए आज ऑरवेल के साथ इस सफर पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए लिखने का मतलब क्या था और उनके जो अनुभव हैं वो आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं।
अच्छा, तो इस गहरी बातचीत में उतरने से पहले थोड़ा जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जान लेते हैं। मतलब उनका असली नाम तो एरिक आर्थर ब्लेयर था।
हाँ, और वो 20वीं सदी के सबसे अहम, सबसे प्रभावशाली लेखकों और राजनीतिक चिंतकों में गिने जाते हैं। 1903 में पैदा हुए थे। और एक दिलचस्प बात, उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, मोतिहारी बिहार में। ये बहुत लोग नहीं जानते।
हाँ, ये बात सही है। और उनकी जिंदगी को देखें तो वो किसी एक ढरे पर नहीं चली। ऐसा नहीं कि बस कमरे में बैठकर लिखते रहे। इंग्लैंड के मशहूर ईटन कॉलेज से पढ़े, लेकिन फिर बर्मा चले गए। वहां ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस में नौकरी की
5 साल,
और वहां उन्होंने साम्राज्यवाद को इतने करीब से देखा कि उससे नफरत सी हो गई। यह अनुभव उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाल गया, शुरू में ही।
बिल्कुल।
और उसके बाद तो उनकी जिंदगी अनुभवों का एक सिलसिला ही बन गई। पेरिस और लंदन में उन्होंने भयानक गरीबी झेली, मतलब बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन में।
हाँ, और फिर सब छोड़कर स्पेन चले गए। वहां गृह युद्ध चल रहा था, तो फासीवाद के खिलाफ लड़ने पहुंच गए। और वहां उन्होंने सिर्फ फासीवाद नहीं देखा, बल्कि जो सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट थे, उनके राजनीतिक दांवपेच, उनका झूठ, वो भी बहुत नजदीक से देखा।
और ये अनुभव खास तौर पर स्पेन वाला उनकी किताब होमेज टू कैटलोनिया में है। इसने उन्हें हर तरह की तानाशाही का, मतलब, कट्टर विरोधी बना दिया, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग।
सही कहा। और यही चीज उन्हें शायद बाकी लेखकों से अलग करती है। उन्होंने दुनिया की जो बड़ी समस्याएं थी, उन्हें सिर्फ पढ़ा या समझा नहीं, बल्कि जिया था। गरीबी, युद्ध, राजनीतिक धोखा, सब कुछ।
हाँ, सब अपनी आंखों से देखा और भोगा था। इसीलिए जब ऑरवेल लिखने की वजहों पर बात करते हैं तो वो हवा हवाई बातें नहीं लगती, वो उनके भोगे हुए सच से निकलती हैं।
बिल्कुल, वो एक कलाकार भी थे, भाषा के जादूगर और एक राजनीतिक योद्धा भी। और इसी मेल से निकली एनिमल फार्म और 1984 जैसी किताबें जो आज भी हमें डराती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं।
अच्छा, अब आते हैं इस निबंध पर, व्हाई आई राइट। जैसा हमने कहा, ये कोई मोटी किताब नहीं है, 1946 में छपा एक छोटा सा पर बहुत ही दमदार निबंध है। अक्सर ऑरवेल के दूसरे निबंधों के कलेक्शन में इसे शामिल किया जाता है।
पूरी ईमानदारी से ये जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर वो लिखते क्यों हैं, क्या चीज उन्हें लिखने पर मजबूर करती है।
ये एक तरह से उनकी निजी स्वीकारोक्ति भी है ना, और साथ ही लिखने की पूरी प्रक्रिया को समझने का एक ढांचा भी देता है। वो अपने बचपन से शुरू करते हैं, फिर जवानी के दिन और स्पेनिश गृह युद्ध तक आते आते कैसे उनके लिखने की वजह बदली, ये सब बताते हैं।
बिल्कुल। और इस निबंध का जो दिल है, वो है ऑरवेल का ये कहना कि हर गंभीर लेखक के लिखने के पीछे 4 मुख्य ताकतें काम करती हैं। पहली है सरासर अहंकार,
शेयर ईगोइज्म।
हाँ, यानी मशहूर होने की इच्छा, स्मार्ट दिखने की चाहत, मरने के बाद भी याद किए जाने की तमन्ना,
ये सब।
दूसरी है सौंदर्य बोध, एस्थेटिक एंथुजियाज्म।
ये दुनिया की खूबसूरती को महसूस करना है, या फिर भाषा की अपनी सुंदरता, शब्दों का सही जमाव, उनकी लय, उनसे जो एक आनंद मिलता है वो है। एक अच्छी कहानी या वाक्य गढ़ने का सुख,
विशुद्ध कलात्मक प्रेरणा कह सकते हैं। हाँ, तीसरी है ऐतिहासिक आवेग, हिस्टोरिकल इम्पल्स, मतलब चीजों को वैसे ही देखने की इच्छा जैसी वो असल में है, सच्चाई का पता लगाना और उसे भविष्य के लिए दर्ज कर लेना, सच को रिकॉर्ड करने की जिद,
ताकि उसे भुलाया ना जा सके या झुठलाया ना जा सके।
बिल्कुल। और चौथी, जिसे ऑरवेल अपने लिए सबसे अहम मानते हैं, वो है राजनीतिक उद्देश्य, पॉलिटिकल पर्पस। और यहाँ राजनीतिक का मतलब सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है।
इसका मतलब है दुनिया को एक खास दिशा में ले जाने की इच्छा, समाज के बारे में लोगों की सोच बदलने की कोशिश करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना।
हाँ, और ऑरवेल का मानना था कि ये चारों वजहें हर लेखक में होती हैं, किसी में कोई कम, किसी में कोई ज्यादा, लेकिन उनके अपने जीवन में, खासकर 1930s के दशक के बाद और स्पेन के अनुभव के बाद, ये चौथी वजह यानी राजनीतिक उद्देश्य इतना हावी हो गया कि उसने बाकी तीनों को भी अपने साथ खींच लिया।
तो ये निबंध हमें यही कहानी बताता है कि कैसे एक निजी शौक या कला एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बन सकती है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि ऑरवेल इन विचारों तक पहुंचे कैसे। वो शुरुआत करते अपने बचपन से, बताते हैं कि कैसे वो थोड़े अकेले रहने वाले बच्चे थे, शायद स्कूल में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे।
हाँ, और कहानियों और कविताओं में उन्हें अपनी एक अलग दुनिया मिल गई थी, एक पहचान मिली। वो कहते हैं कि 5-6 साल की उम्र में ही उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वो बड़े होकर लेखक बनेंगे।
कमाल है ना, इतनी कम उम्र में। और वो मानते भी हैं कि तब लिखने की वजह बड़ी सीधी सादी थी, बस कुछ बनाना, शब्दों से खेलना और हाँ, लोगों का ध्यान खींचना, उन्हें इम्प्रेस करना।
तो ये उनके अंदर का वो अहंकार और सौंदर्य बोध का शुरुआती रूप था, कह सकते हैं।
स्कूल में भी लिखते रहे, ईटन में, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो लेखन ज्यादातर दिखावटी था, दूसरों की नकल जैसा।
फिर एक बड़ा बदलाव आया जब वो बर्मा गए। वहां पुलिस की नौकरी, साम्राज्यवाद का वो भारी बोझ, रोजमर्रा की जिंदगी की कठोर सच्चाई, इन सबके सामने उन्हें अपनी लिखने की जो इच्छा थी वो थोड़ी बचकानी लगने लगी। उन्होंने लिखना लगभग छोड़ ही दिया था उस दौरान। ये दिखाता है कि जिंदगी के जो ठोस अनुभव होते हैं वो कभी कभी हमारी अंदरूनी रचनात्मक इच्छाओं पर कैसे पानी फेर सकते हैं। उन्हें लगा कि असली दुनिया के सामने ये सब बेकार की बातें, और फिर वो वापस लेखन की तरफ आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। और यहीं पर वो उन चार मुख्य प्रेरणाओं का जिक्र करते हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं, शायद हर गंभीर लेखक के लिए सच हैं। पहली, सरासर अहंकार, शेयर ईगोइज्म।
और यहाँ ऑरवेल की ईमानदारी देखने लायक है। वो साफ मानते हैं कि लेखक अक्सर आम लोगों से ज्यादा घमंडी होते हैं, ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं।
हाँ, नाम कमाने की इच्छा, स्मार्ट समझे जाने की चाहत, या शायद बचपन में नजरअंदाज किए जाने का बदला लेने की भावना, ये सब बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर्स हैं। वो कहते हैं कि इसे छुपाना बेईमानी होगी।
यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये अहंकार हमेशा बुरा ही होता है? शायद ऑरवेल का मतलब है कि यही वो आग है जो लेखक को घंटों अकेले बैठकर मेहनत करने पर मजबूर करती है, एक जरूरी बुराई।
हो सकता है, वो इसे नकारते नहीं हैं, बस पहचानते हैं। अच्छा, दूसरी प्रेरणा है सौंदर्य बोध, एस्थेटिक एंथुजियाज्म।
हाँ, ये बाहरी दुनिया की सुंदरता को महसूस करने की क्षमता है, या फिर भाषा की अपनी सुंदरता, शब्दों की सही तरतीब, उनकी आवाज, उनकी लय, एक अच्छे गद्य की ताकत से जो सुकून मिलता है।
ये शिल्प से प्यार है, आर्ट फॉर आर्ट सेक वाली बात।
बिल्कुल। तीसरी है ऐतिहासिक आवेग, हिस्टोरिकल इम्पल्स। ये चीजों को वैसे ही देखने की जिद है जैसी वो हैं, सच्चाई का पता लगाना और उसे भविष्य के लिए रिकॉर्ड कर देना।
खासकर उस जमाने में जब ऑरवेल ने देखा कि इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सच को कैसे झूठ बनाया जा रहा है, तब ये प्रेरणा उनके लिए बहुत अहम हो गई, एक ईमानदार गवाह बनने की इच्छा।
हाँ, और चौथी और ऑरवेल के लिए सबसे निर्णायक, राजनीतिक उद्देश्य।
जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ चुनाव लड़ना या पार्टीबाजी नहीं है, नहीं, ये दुनिया को बेहतर बनाने की या कम से कम अपनी समझ के हिसाब से सही दिशा में ले जाने की गहरी इच्छा है। अन्याय को उजागर करना, दबे कुचलों की आवाज बनना, लोगों को सोचने पर मजबूर करना।
और ऑरवेल का तो यहाँ तक मानना था कि कोई भी किताब राजनैतिक रूप से निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। चुप रहना भी एक तरह की राजनीति है, जो चल रहा है उसे चलने देने की राजनीति।
बिल्कुल, मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की राजनीति।
अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। ऑरवेल बताते हैं कि कैसे ये चारों प्रेरणाएं उनके अंदर हमेशा से थीं, लेकिन उनका बैलेंस बदला।
हाँ, संतुलन।
ये बदलाव आया 1930 के दशक में, जब दुनिया में फासीवाद सर उठा रहा था, और फिर स्पैनिश गृह युद्ध 1936-37, उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया।
वो साफ कहते हैं, स्पेनिश युद्ध और 1936-37 की दूसरी घटनाओं ने पासा पलट दिया। इसके बाद उन्हें पता चल गया कि उन्हें किसके पक्ष में खड़ा होना है और क्या लिखना है।
हाँ, और यहीं से उनकी वो मशहूर लाइन आती है, 1936 के बाद से मैंने जो भी गंभीर काम लिखा है उसकी हर पंक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनायकवाद के खिलाफ और लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए लिखी गई है, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ।
कितनी बड़ी घोषणा है। उनका राजनीतिक मकसद अब एकदम साफ, एकदम धारदार हो गया था।
बिल्कुल, स्पेन में उन्होंने दोनों तरफ से, फासिस्टों से भी और कम्युनिस्टों से भी, झूठ देखा, प्रोपेगेंडा देखा, सच्चाई को कुचलते हुए देखा। इसने उनके राजनीतिक उद्देश्य को तो मजबूत किया ही,
साथ ही ऐतिहासिक आवेग को भी जगा दिया कि सच को दर्ज करना कितना जरूरी है।
सही कहा। अब भाषा की सुंदरता यानी सौंदर्य बोध, वो सिर्फ कला नहीं रही, वो सच को असरदार ढंग से कहने का हथियार बन गई।
और उनका निजी अहंकार भी, वो भी इसी बड़े मकसद से जुड़ गया। वो एक जाने माने प्रभावशाली लेखक बनना चाहते थे ताकि उनकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वो अन्याय के खिलाफ ज्यादा जोर से बोल सकें।
हाँ, तो ये एक तरह का संगम था जहाँ राजनैतिक जरूरत ने बाकी तीनों प्रेरणाओं को एक नई दिशा दे दी, उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। अब लिखना सिर्फ एक काम नहीं रहा, एक मिशन बन गया था उनके लिए।
निबंध के आखिर में ऑरवेल एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक लेखन को कला कैसे बनाया जाए।
हाँ, ये उनके लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। वो मानते थे कि ये बहुत मुश्किल संतुलन है, सिर्फ नारे लिखना या प्रोपोगेंडा करना वो कला नहीं है।
लेकिन ऐसी कला लिखना जो राजनीति से पूरी तरह कटी हुई हो, वो भी उन्हें इस दौर में मतलब बेमानी लगती थी।
और वो बड़ी ईमानदारी से ये भी मानते हैं कि जब जब उनके लेखन में ये राजनैतिक उद्देश्य कमजोर पड़ा, तब तब उनका लेखन बेजान हो गया, बनावटी हो गया, भारी भरकम शब्दों वाला हो गया।
हाँ, वो लिखते हैं, ये हमेशा वहीं होता है जहां मेरे पास राजनीतिक उद्देश्य की कमी होती है, कि मैंने निर्जीव किताबें लिखी और बैंगनी गद्य, अर्थहीन वाक्यों, सजावटी विशेषणों और सामान्य रूप से आडंबर में धोखा खा गया। ये कितनी बड़ी आत्मालोचना है खुद के लिए।
बिल्कुल, उनका मकसद था ऐसा साहित्य बनाना जो राजनीतिक रूप से ताकतवर भी हो और कला के लिहाज से बेहतरीन भी। और एनिमल फार्म,
हाँ, जबरदस्त उदाहरण है,
इसी कोशिश का सबसे शानदार उदाहरण है। एक सरल जानवरों की कहानी जो इतनी खूबसूरती से तानाशाही पर चोट करती है। ऑरवेल खुद मानते हैं कि ये उनकी पहली किताब थी जिसमें उन्होंने जानबूझकर राजनीतिक और कलात्मक मकसदों को मिलाने की पूरी कोशिश की, और वो काफी हद तक सफल भी रहे।
अंत में वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी अपनी प्रकृति और जिस दौर में वो जी रहे थे उसने उन्हें एक खास तरह का लेखक बनने पर मजबूर किया, एक तरह का राजनीतिक पर्चेबाज, पैम्फलेटियर, जो अन्याय के खिलाफ लिखता है लेकिन जिसे दुनिया की सुंदरता और भाषा की कला से भी गहरा लगाव है।
हाँ, उनके लिए लिखना अपने समय की भयानक सच्चाइयों का जवाब देने का एक जरूरी और शायद एकमात्र तरीका था।
तो इस छोटे से निबंध से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं, मतलब की टेकअवेज क्या है?
पहला तो ये कि राजनीति और निजी जीवन का रिश्ता कितना गहरा है। ऑरवेल का जीवन दिखाता है कि लेखक या कलाकार अपने समय की राजनीति और अपने निजी अनुभवों से कटकर नहीं रह सकता, बल्कि उसी से उसकी कला उपजती है।
दूसरा, वो लिखने की चार प्रेरणाओं का ढांचा ये अपने आप में एक बहुत काम का टूल है। इससे हम किसी भी लेखक या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को बेहतर समझ सकते हैं, चाहे वो कोई नेता का भाषण हो या सोशल मीडिया पोस्ट।
हाँ, हम सोच सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी प्रेरणा ज्यादा काम कर रही है, सिर्फ नाम कमाने की इच्छा, भाषा का खेल, सच बताने की कोशिश या किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की।
सही बात है। तीसरा, कला एक राजनीतिक हथियार के तौर पर। ऑरवेल का यकीन था कि शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है, और जब समाज में अन्याय हो तो लेखक का ये फर्ज है कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करे।
ये बात आज भी उतनी ही सच है ना, जब हम देखते हैं कि कैसे फिल्में, गीत या किताबें सामाजिक बहस छेड़ देती हैं।
बिल्कुल। चौथा, लेखक की नैतिक जिम्मेदारी। ऑरवेल मानते थे कि लेखक भाषा के रखवाले होते हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि वो सच को खोजें और उसकी हिफाजत करें, खासकर तब जब भाषा का इस्तेमाल ही सच को छुपाने या तोड़ने मरोड़ने के लिए किया जा रहा हो।
आज के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के दौर में ये बात तो और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
बहुत ज्यादा। पांचवा, कला और उद्देशिका, वो नाजुक संतुलन। ऑरविल हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ अच्छा मकसद होना काफी नहीं है। अगर आपकी बात कलात्मक रूप से कमजोर है तो वो असर नहीं करेगी।
हाँ, उद्देश्य कला को गहराई देता है और कला उद्देश्य को पंख लगाती है। इस संतुलन को साधना ही असली चुनौती है।
और आखिरी बात, ईमानदारी की ताकत। जिस तरह ऑरवेल अपनी कमजोरियों जैसे अपने अहंकार को खुलकर स्वीकार करते हैं, वो हमें सिखाता है कि खुद के प्रति ईमानदार होना कितना जरूरी है।
आजकल के सार्वजनिक जीवन में, चाहे वो राजनीति हो, मीडिया हो या कॉर्पोरेट जगत, ऐसी स्पष्टवादिता की कमी महसूस होती है ना? अपनी असली मंशा को पहचानना और स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस निबंध में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, छोटी लेकिन बहुत गहरी।
हाँ, जैसे वो वाली, मेरा शुरुआती बिंदु हमेशा पक्षपात की भावना, अन्याय की भावना होती है। जब मैं कोई किताब लिखने बैठता हूँ तो मैं खुद से ये नहीं कहता, मैं कलाकृति बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कोई झूठ है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूँ, कोई तथ्य है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और मेरी पहली चिंता ये होती है कि मेरी बात सुनी जाए।
कितना साफ है, मकसद पहले, कला उसे साधने का जरिया।
और वो लाइन तो जैसे उनके पूरे जीवन के लेखन का सार है। 1936 के बाद से मेरे गंभीर काम की हर पंक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनायकवाद के खिलाफ और लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए लिखी गई है। ये दिखाता है कि स्पेन का अनुभव उनके लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, उनका मिशन क्या बन गया था। उनकी आत्मालोचना वाली बात भी बहुत असरदार है। ये हमेशा वहीं होता है जहां मेरे पास राजनीतिक उद्देश्य की कमी होती है, कि मैंने निर्जीव किताबें लिखी और बैंगनी गद्द अर्थहीन वाक्यों, सजावटी विशेषणों और सामान्य रूप से आडंबर में धोखा खा गया।
मतलब राजनीतिक उद्देश्य ने उनकी कला को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे पैनापन दिया, सच्चाई दी, जान दी।
बिल्कुल। और अंत में वो विचार जो अक्सर ऑरवेल से जुड़ा जाता है, भले ही निबंध में शब्दशः ना हो, पर उसका निचोड़ यही है, सारी कला प्रोपेगेंडा होती है, पर सारा प्रोपेगेंडा कला नहीं होता।
हाँ, यानी हर कलाकृति कोई ना कोई नजरिया तो पेश करती ही है, एक तरह का प्रचार करती है, लेकिन उसी से प्रचार से बढ़कर कला बनने के लिए ईमानदारी चाहिए, हुनर चाहिए और इंसानियत से जुड़ाव चाहिए।
अच्छा, ये सारे विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है? क्या ये सिर्फ लेखकों और बुद्धिजीवियों के लिए ही है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम सबके लिए काम के हैं। देखिए, अगर आप लिखते हैं या किसी भी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये निबंध आपको अपनी प्रेरणाओं को समझने में मदद कर सकता है। आप क्यों कर रहे हैं ये काम, आपका असली मकसद क्या है, ये जानने से आपका काम ज्यादा सच्चा और असरदार बन सकता है।
और अगर आप पाठक हैं या मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑरवेल की ये चार प्रेरणाएं एक चश्मे की तरह काम कर सकती हैं। कोई खबर पढ़ते हुए, कोई भाषण सुनते हुए या कोई फिल्म देखते हुए आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या है। सिर्फ ध्यान खींचना, कला दिखाना, सच बताना या किसी एजेंडे को बढ़ाना।
हाँ, यह आपको एक ज्यादा जागरूक और समझदार उपभोक्ता बनाता है, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है।
बिल्कुल।
अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं जहाँ कम्युनिकेशन जरूरी है, डॉक्टर हो, टीचर हो, मैनेजर, वैज्ञानिक, तो ये निबंध सिखाता है कि अपनी बात को साफ, ईमानदार और असरदार तरीके से कैसे कहें। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, अपनी नीयत साफ रखना और उसे ऐसे पेश करना कि लोग समझें और भरोसा करें, ये भी जरूरी है।
और एक आम नागरिक के तौर पर ये हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अन्याय को पहचानने और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आवाज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई लेखक बने।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन हर कोई अपनी बात तो कह सकता है, अपने दायरे में बदलाव लाने की कोशिश तो कर सकता है। एक तरह से हमें उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देता है।
तो कुल मिलाकर इस चर्चा का सबसे बड़ा सार शायद यही है कि जब किसी काम के पीछे एक स्पष्ट और सच्चा उद्देश्य होता है, तो वो काम बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ऑरवेल हमें सिखाते हैं कि लिखना या कोई भी रचनात्मक काम करना दुनिया से कटकर अपने में मगन रहना नहीं है।
नहीं, बल्कि ये दुनिया के प्रति आपकी एक जिंदा और जरूरी प्रतिक्रिया है।
बिल्कुल। और ये भी कि हम जो कहते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो कभी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। उसमें हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी पसंद नापसंद, सच के प्रति हमारी निष्ठा और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, सब कुछ मिला होता है।
हाँ, इसलिए भाषा की सफाई और मकसद की ईमानदारी सिर्फ लिखने पढ़ने की बातें नहीं है। ऑरवेल के लिए तो ये इंसानी आजादी और एक सेहतमंद समाज की बुनियाद थी।
ऑरवेल का वाई आई राइट सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक घोषणा पत्र है जो सोचता है, लिखता है या बोलता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब चारों तरफ झूठ और अन्याय हो तो चुप रहना भी एक पक्ष लेना है।
और शायद सबसे अच्छा काम जो एक सोचने वाला इंसान कर सकता है वो है सच को हिम्मत और खूबसूरती से बयान करना।
बिल्कुल।
आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई बोल रहा है, 2400 घंटे खबरें बरस रही हैं और सच झूठ का फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में ऑरवेल की तरह रुककर खुद से ये पूछना कितना जरूरी है कि हम जो कह रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी असली मंशा क्या है। क्या हम सिर्फ शोर बढ़ा रहे हैं या वाकई कुछ सार्थक कहना चाहते हैं?
हाँ, क्या हम किसी झूठ को बेनकाब कर रहे हैं या अनजाने में उसे फैलाने में मदद कर रहे हैं? इस पर सोचना शायद आज पहले से ज्यादा जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।